जैसे प्लास्टर बना हुआ है, वो तो सेना में जाने लायक नहीं है, तो छोड़ दिया और सबके बेटों को ले गए। अब सब आए कि बहुत अच्छा हुआ कि पैर टूट गया। अभी कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ कि पैर टूट गया। आप सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि पैर टूट गया। कम से कम तुम्हारे पास तो है तुम्हारा बेटा, हमारा तो फौज में चला गया, मरेगा जिएगा क्या कह सकते, बताइएगा। जीवन के गणित ऐसे सुलझाए नहीं सुलझते हैं। भले और बुरे में तो हम पूरी जिंदगी भरा और बुरा सोचते रहें, भैया कोई पार नहीं है। जो भी स्थिति बने उसको हम एक्सेप्ट कर ले तो हम उस स्थिति से पार हो जाते हैं। क्या भला इस संसार में और क्या बुरा, ये जो बाहर दिखता है उसमें हम भला बुरा देख लेते हैं। नहीं, अगर हम सही अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित हैं तो समर्पण हमें क्या सिखाएगा कि इस संसार में ऐसे रहो कि जो भी भला और बुरा हो उसके बीच समत्व, उसके बीच साम रख करके और अपने जीवन को जियो। शायद यही शिक्षा हमें ले लेनी चाहिए तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। मैं भावना भाता हूँ कि हम सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई प्रयास, जो अच्छा लगे उसको शुरू करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। सभी लोग अपने आचार्य श्री के 34वें दीक्षा दिवस पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने एक साथ बैठे हुए हैं। हम जब किसी महापुरुष के बारे में उनका गुणगान करते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तब भी मानिएगा कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाने का ही उपाय करते हैं। हम अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को निर्मल तो बनाते ही हैं, पर कुछ ऐसे अवसर हमारे जीवन में आते हैं जिनमें हमें बिना पुरुषार्थ के ही अपने जीवन को निर्मल बनाने का संदेश मिल जाता है। आज का अवसर ऐसा ही अवसर है। दीक्षा के मायने होता है जिन लिंग को धारण करना। मुनियारी का, एलक शुल्लक शुल्ली का, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए लिंग हैं, चिन्ह हैं, जिनसे कि हम साक्षात और परंपरा से मुक्ति प्राप्त करते हैं। आज आचार्य महाराज ने सन 1968 में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा डायरेक्ट ब्रह्मचारी से और जिनेंद्र भगवान के
कहे गए पांच महाव्रतों को अंगीकार करके मुनि दीक्षा ग्रहण की। सन 1968 में जब पहली बार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुंचे थे, तब आचार्य श्री खुद सुनाते हैं कि हम जब आचार्य महाराज के शाम को पैर दबाने लगे तो ज्ञान सागर जी कहते हैं कि कैसे आना हुआ। तो आचार्य महाराज जवाब देते हैं कि आपके पास विद्या अध्ययन के लिए आया हूं। तो ज्ञान सागर जी कहते हैं हां, ऐसे और भी ब्रह्मचारी आए हैं और विद्या अध्ययन करके लौट गए। तो आचार्य श्री को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ज्ञान सागर जी महाराज हमें भी ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा करके और वापिस भेज दें। तो उसी समय उन्होंने बहुत बड़ा व्रत अंगीकार कर लिया था। आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में कहा था कि महाराज मैं अब आज से आपके चरणों में अपने को समर्पित करता हूं और वाहन का त्याग करता हूं। अब मैं पांव पैदल ही आपके साथ चलूंगा जब तक जीवन है। तो कहते हैं कि ज्ञान सागर जी बहुत खुश हुए थे। इतनी खुशी हुई थी जैसे कि जीवन भर किसी को पुत्र ना हुआ हो और वृद्ध अवस्था में किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाए। जीवन भर 55 साल में तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा ली और उसके बाद उनकी वृद्धावस्था थी, तब आचार्य श्री जैसे शिष्य उनको मिले। आज का दिन शिष्यत्व को अंगीकार करने का दिन है। जिनेंद्र भगवान की कही गई जिन दीक्षा लेने का दिन तो है ही, शिष्यत्व को अंगीकार करने का दिन है। भैया गुरु हो जाना तो कठिन है ही, मुझे तो लगता है शिष्य होना उससे भी ज्यादा कठिन है। अगर हमने अपने को गुरु मान लिया है तो हमें कहीं कोई गुरु दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं गुरु देखना है तो हमें सबसे पहले शिष्य की आंख पानी होगी। उसके बिना कहीं कोई गुरु दिखाई नहीं पड़ता। जो भी गुरु हुए हैं वे गुरु होने से पहले शिष्य हुए हैं। आज का दिन ऐसा ही दुर्लभ और महान दिन है। आचार्य महाराज के बारे में मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको सोचता हूं, कुछ संस्मरण सुनाऊं। उनके अपने विशेषणों की चर्चा तो बहुत कठिन है। उत्तम खमाए पुडवी पसन्न भावेन अच्छ जल सरिसा कम मिंदन दहनादो अग्नि वाउ असंगादो गयन विव निरुबलेवा अखोवा सायरु मुनिवसा एरस गुण निल्यानम पायम पणमामी शुद्ध मडो। मैं ऐसे गुणों से युक्त आचार्य भगवंत को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। कैसे हैं वे पृथ्वी के समान क्षमावान हैं। जैसे धरती हम उसे कुचलें, उसे खोदें, उसे चाहे जैसा उस पर सामान पटकें, वो सब सहन करती है। इसी तरह पृथ्वी के समान वे क्षमावान हैं। अच्छ जल सरिसा, जैसे मुनि मन सम निर्मल नील, जैसे कि जल स्वच्छ होता है वैसे ही वे जल के समान निर्मल और प्रसन्न चित्त रहते हैं। हमेशा ये चीज उनके भीतर देखने को मिलती है। उनके चेहरे पर हमेशा एक सहज सी मुस्कान अपन देख पाते हैं। ये उनकी अपनी विशेषता है। ये उनकी वो जो आंतरिक प्रसन्नता है उस बात की सूचक है। कम मिंदन दहनादो अग्नि, पृथ्वी हो गई, जल हो गई। अग्नि की विशेषता क्या है कि वो जो भी अतिरिक्त है वो जला देती है। सोने में से जब अतिरिक्त किटकाली में जल जाती है तो सोने में निखार आता है। ऐसे ही कर्मों के ईंधन को जलाने में वे अग्नि के समान हैं। वे इतने बड़े तपस्वी हैं, इसलिए उनको अग्नि के समान कर्मों को जलाने वाला कहा। कम मिंदन दहनादो अग्नि वायु असंग आयो, वे वायु के समान निसंग विचरण करते हैं, उनके पीछे पीछे उनका संग है लेकिन उन्होंने सबको छोड़ दिया है। संग के मायने हैं परिग्रह, उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया इसलिए वे वायु के समान निसंग हैं। और निर्वलोवा अखोवा, जैसे आकाश में कितने भी बादल क्यों ना घिर जाएं लेकिन आकाश फिर भी अलिप्त रहता है, वो जरा भी बादलों से मलिन नहीं होता है, लिप्त नहीं होता, ऐसे वे आकाश के समान अलिप्त हैं। और सायर निव गंभीरा, वे सागर के समान गंभीर हैं। सागर भले ही ऊपर हवाएं चलने से लहरदार दिखाई देता है लेकिन जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही गंभीर होता है, ऐसे ही वे भी आहार विहार निहार करते हुए थोड़े बहुत क्रियात्मक दिखाई पड़ते हैं लेकिन वे आत्मा में बहुत गहरे हैं, इसलिए सागर के समान उन्हें गंभीर कहा है। ये आगम में एक साधु की, और साधु में भी जो विशिष्ट साधु हैं, जो अन्य साधुओं को मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उस पर उन्हें दीक्षा और शिक्षा देते हैं, स्वयं उस मार्ग पर सावधानी से चलते हैं, ऐसे महान जिनको हम आचार्य कहते हैं उनकी ये सारी विशेषताएं हैं। हमारे आचार्य महाराज में हमें ये सब चीजें देखने में आती हैं। इतना ही नहीं, विनोबा ने जो एक गुरु की विशेषताएं लिखी हैं, वे गुरु की विशेषताएं भी उनमें अगर हम शिष्य की आंख से देखें तो दिखाई पड़ती हैं। देखो कितनी सारी चीजें हैं, उनकी आज दीक्षा है, वे एक साधक भी हैं, वे और साधकों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं इसलिए वे आचार्य भी हैं, वे अपने शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं इसलिए वे उनके गुरु भी हैं। शिष्यानुग्रह कुशलो, शिष्य पर अनुग्रह करने वाले, उसे अपने बच्चों के समान पाल पोस कर बड़ा और अपने पैरों पर खड़ा कर देने वाले, हाथ पकड़ के जो चलना सिखाते हैं, ऐसे गुरु भी हैं। इसलिए गुरु की विशेषताएं भी उनके भीतर अपन देख लें। तीन विशेषताएं हैं, संस्मरण तो 150 संस्मरण भी मैं आपको सुनाऊं तो भी मुझे मन नहीं भरेगा, कमती लगेंगे, लेकिन अपन एक समय की निर्धारित सीमा में, और कुछ संस्मरण जो हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन को निर्मलता देते हैं, हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने आज अपने जीवन को निर्मल बनाने की शुरुआत की, आज से 34 वर्ष पहले, 33 वर्ष पूरे हो गए हैं, 34वां वर्ष शुरू हुआ है। दीक्षा अपने जीवन को निर्मल बनाने की एक प्रक्रिया ही तो है। उनकी तीन विशेषताएं हैं जो एक गुरु के भीतर होनी चाहिए। लिखते हैं कि वे मां के समान करुणावान हो। गुरु मां के समान करुणावान होता है, उसे मां कहा है गुरु को। क्यों? एक मां जो कि हमारे शरीर की रचना करती है, शरीर की रचना में निमित्त बनती है, और वे मां कैसी हैं जो हमें दूसरा जन्म देते हैं, गुरु हैं जो कि हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहारा देते हैं, इसलिए वे मां के समान करुणावान हैं। बड़ी से बड़ी करुणा है दूसरे का कल्याण करने का मार्ग दिखा देना, भैया कोई भूखा है उसको भोजन करा देना भी करुणा है, कोई रोगी है उसे औषधि दे देना भी करुणा है, ज्ञान किसी के पास अल्प है उसे ज्ञान दे देना भी करुणा है, संसार की सारी सुख सुविधाएं मुहैया कर देना भी करुणा है, लेकिन किसी को मोक्ष का उपाय बताकर उसे संसार से मुक्ति दिला देना, इससे बड़ी करुणा कोई हो सकती है? हमारी माँ हमें और सब सुविधाएं दे सकती है लेकिन वे तो गुरु ही हैं जो कि हमें मोक्ष के मार्ग पर लगाकर और हमारी मुक्ति के लिए भी हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक करुणावान हैं। और दूसरी बात, वे साधु के समान शीलवान हैं। साधु की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता है। और अपने स्वभाव में निरत रहता है, स्वभाव में लीन रहता है, यही उसका शील है। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जाती तो हैं, लेकिन वे उसमें लिप्त नहीं होती, लालायत नहीं होती हैं। ये साधु की विशेषता है। साधु भी स्वाद लेते हैं, खट्टे को खट्टा कहते हैं, मीठे को मीठा कहते हैं, लेकिन ये मीठा अच्छा है इसलिए मुझे निरंतर मिलता रहे, ये खट्टा तो भाता नहीं है इसको हटा दो, ऐसे राग द्वेष में नहीं पड़ते। यही उनके शीलवान होने का एक कहना चाहिए कसौटी है। पांचों इंद्रियों के विषय सामने फैले हैं और आज के संसार में तो पांचों इंद्रियों के विषय की चकाचौंध इतनी अधिक है कि अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी फिसल जाए तो फिर उठना बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे खोटे समय में कह रहा हूं। वैसे तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जबकि हमें आचार्य महाराज का शिष्यत्व मिला है, लेकिन फिर भी जब बाह्य जगत में देखते हैं तो ऐसी विज्ञान की प्रगति हुई है कि हमारी लालसाओं को और बढ़ा दिया है। हम चीजें जो खरीदने जाते हैं वे नहीं खरीद पाते हैं और उसके चीजों के एडवर्टाइजमेंट, उनके रैपर्स और उनका आकर्षण देखकर इतने लोभ से लिप्त हो जाते हैं कि कुछ और खरीद के ले आते हैं। ऐसे भौतिक जगत में भी जो अपने पांचों इंद्रियों को जीतने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? चित चमत्कार से बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? ऐसी साधुता उनके भीतर है और फिर कहते हैं विज्ञानी के समान प्रज्ञावान है। ये तीन विशेषताएं हैं। मां के समान करुणा भी है, एक ज्ञानी के समान उनके अंदर प्रज्ञा भी है, टैलेंट जिसको कहते हैं। बहुत डिफरेंट चीज है ज्ञान से, वो स्वतः उत्पन्न होनी, पन्नाए घेतव्यो पन्नाए छेतव्यो, प्रज्ञा रूपी छैनी जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। ऐसे ज्ञान से, ऐसी प्रज्ञा से युक्त है, ऐसे प्रज्ञा की छैनी उनके पास है जिससे वे निरंतर अपने आत्मा और देह के पृथक पृथक करण के अनुभव को करते हैं, इसलिए वे ज्ञानी हैं। चार लाइनें किताब की पढ़ करके और ज्ञानी हो जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने देह और आत्मा को जुदा जुदा श्रद्धान करके, मान करके अनुभव भी करना, ये बहुत दुर्लभ है। वे ऐसे प्रज्ञावान ज्ञानी भी हैं, उनकी ये सारी विशेषताएं और बहुत सारी विशेषताएं। शायद एक जगह लिखा है कि अगर हम सारे समुद्र को स्याही बना ले और कलम बना ले सुमेरु की, और फिर कागज पूरी पृथ्वी को बना ले और हम लिखना शुरू करें, तो भी अपने गुरु के गुणों को हम लिख नहीं पाएंगे। कागज छोटा पड़ जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, कलम घिस जाएगी, पर हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए गुरु के वर्णन में और विशेष उनकी विशेषताओं को क्या कहूं, जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। पर मेरे जीवन में मैंने जो अनुभव किया उसमें से कुछ बातें आपको सुनाता हूं। उनकी निरीहता आपने नहीं देखी होगी। हमने जब कुल तीन और चार साधु हुआ करते थे तब से आचार्य महाराज को देखा है। तीन चार साधुओं में भी वे जितने निर्लिप्त थे, जितने निरीह थे, आज सैकड़ों उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे उतने ही निष्प्रह और उतने ही निरीह हैं। उन्हें अपने सब शिष्यों के प्रति लगाव तो है, लेकिन मोह किसी से नहीं है। अपना आत्म कल्याण करना चाहो तो आशीर्वाद है, और आत्म कल्याण नहीं करना चाहो तो तुम्हें जबरदस्ती अपना शिष्य मानता रहूं, ऐसा इस धोखे में वे नहीं रहते। जो अपने आत्म कल्याण में लगा है वो उनका शिष्य स्वतः है, और जो अपने आत्म कल्याण से विमुख है उसे वे कुछ नहीं कहते। ये उनकी निरी वृत्ति है। हम कितनी भी उनकी प्रशंसा करते, उनके चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन कभी देखें जब वे सामायिक में लीन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे आचार्य महाराज हमसे ही बहुत दूर चले गए। निकट होते हुए इतने आत्मस्थ हो जाते हैं। हमने सागर में देखा उनको सनस्ती में, जब सारे लोगों ने, इतनी बड़ी समाज ने मिलकर के उनको चारित्र चक्रवर्ती का पद देने की घोषणा करी और तालियों की गड़गड़ाहट से आधे घंटे तक, और अलग अलग विद्वान जो कि देश के जाने माने विद्वान थे सब उसका समर्थन कर रहे हैं, आचार्य महाराज सिर झुकाए चुपचाप बैठे हुए रहे। सोचा शायद भी अपने प्रवचन में कुछ कहेंगे, लेकिन प्रवचन पूरा हो गया, उन्होंने जरा भी कुछ नहीं कहा। अंत में इतना ही कहा कि पद पद पर बहुपद मिलते हैं, पर सब दुख पद आस्पद हैं। कदम कदम पर ऐसे पद और प्रतिष्ठा के अवसर आते हैं, पर वे सब जीवन को नष्ट करने वाले हैं, पर वे जीवन को दुख देने वाले हैं। मुझे ऐसे पदों से आप सब मुक्त रखें। अगर आप अपने को मेरा शिष्य मानते हैं तो आपको मेरा यही आदेश है कि आप इस पद को मेरे साथ न जोड़ें, और यही मेरा आपके लिए उपदेश है कि आप किसी के साथ भी इस तरह की विशेषण लगा लगा करके उसे चने के पेड़ पर चढ़ा करके न पटकें। श्रावक एक क्षण के लिए जब उसका स्वार्थ सत्ता है तो साधु की प्रशंसा में तल्लीन हो जाता है। जिस दिन उसे लगता है कि अब उसका स्वार्थ नहीं सदता, उस दिन उन्हीं साधु की आलोचना करना शुरू कर देता है। इसलिए बेहतर यही है कि साधु अपनी उस प्रशंसा और उस निंदा दोनों से मुक्त रहे। श्रावक तो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। क्षण भर में हमने देखा है कि जिसके चरणों में झुकते थे फिर उसी पर चरण धरने का मन हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज अपनी इस प्रवृत्ति से हम सबको संदेश देते हैं कि ऐसे ही निरीह रहना। कभी भी प्रशंसा करेंगे तो फूल कर कुप्पा नहीं होना, क्योंकि कल के दिन समय बदल सकता है। वे ही निंदा करें तो तुम अपना अपमान महसूस करोगे, नहीं ना तुमने घर इसलिए छोड़ा है कि उन वे प्रणाम करें, और ना इसलिए छोड़ा है कि उनके निंदा करने पर तुम दुखी हो जाओ। तुमने तो अपने आत्म कल्याण के लिए छोड़ा, इसलिए ऐसे निरीह होकर के शिथिलताओं से हमेशा बचते रहना। वे स्वयं भी शिथिलता से बचते हैं। रास्ते में विहार करते चले जा रहे थे, बहुत लंबा विहार हो गया। शाम जहां पहुंचे तो थक गए सब। हम महाराज लोग आचार्य श्री के पैर दबा रहे थे और आचार्य श्री मनोविनोद तो करते ही हैं, कहने लगे अब तो थक गए हैं और मन ये कर रहा है कि थोड़े लेट जाएं। तो हम लोग तो बिल्कुल तैयार ही थे कि अपन तो खुद ही थक गए, महाराज थोड़े लेट हैं तो अपन तो बिल्कुल सो ही जाएंगे। तो वहां महाराज बिल्कुल जो है, अब वैसे सामायिक का समय हो रहा है, आचार्य श्री ने कहा वैसे सामायिक का समय हो रहा है, तो आत्मा तो कह रही है कि सामायिक करें, लेकिन मन कह रहा है कि जरा लेट लें। तो हम लोगों ने समर्थन किया उनका कि महाराज मन कह रहा है तो थोड़ा लेट लेना चाहिए। बस जैसे ही इतना कहा तो जोर से हंसे, पीछे उठाई और दिग्वंदना करने के लिए खड़े हो गए। बोलते हैं कि जो आत्मा कह रहा उसकी मानूंगा, जो मन कह रहा उसकी नहीं मानूंगा, और सामायिक में लीन हो गए। ये शिथिलताओं से स्वयं भी बचना और अपने शिष्यों को भी शिथिलताओं से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले आचार्य महाराज। इतना ही नहीं, ये तो उनके आत्मगुणों की चर्चा हमने करी, बहुत लौकिक से गुण जिनको अपन कहते हैं वात्सल्य, जिनको अपन कहते हैं करुणा, जिनको अपन कहते हैं कृपा, वो भी उनके भीतर उतनी ही है। वे डांटते भी हैं तो संभालते भी हैं। वे डांटते इसलिए हैं कि ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए मामला, वे हित के लिए डांटते हैं, लेकिन वे प्रेम भी उतना ही करते हैं। हम लोग मोरसी से विहार करके या मोरसी पहुंचे थे, विहार करते हुए कीवरखेड़ जाना था मोरसी से, बहुत लंबा था रास्ता, और 9 किलोमीटर पर एक स्थान था, तो सोचा कि वहीं आचार्य महाराज रुकेंगे। तो हम लोग उस समय 11 पीछी थी, तो मुक्तागिरी जा रहे थे, सन 80 की बात है। तो रास्ते में सोचा कि अब 9 किलोमीटर तो सुबह सुबह चलेंगी, तो हम लोग सब शौच से निवृत्त होकर के आराम से पहुंच जाएंगे 9:30 बजे। आचार्य महाराज आगे निकल गए, हम लोग आराम आराम से 9:30 बजे पहुंचे। तो वहां पता लगा कि आचार्य श्री तो 9 बजे यहां से गमन करके आगे चले गए। अब आगे कहां गए हैं, आगे और 11 किलोमीटर है, 11 या 12 किलोमीटर। तो चले, अब वैसे ही थक गए थे, धूप तेज हो गई थी 9:30 बजे तक, और चलते चलते जो है 11:30 बज गए, लेकिन स्थान नहीं पहुंच पाए। हीवरखेड़ 3 किलोमीटर पहले एक बगीचा था संतरे का, उसमें हम थे, नियम सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, दोनों महाराज हमसे बड़े, और हम तीनों जन रह गए थे। तो वहां बैठ गए, सामायिक वहीं करेंगे। आचार्य महाराज के पास खबर भेज दी कि हम लोग यहां तक आ पाए हैं और 3 किलोमीटर अब सामायिक के बाद आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद है, वहीं सामायिक करके आना। हमने कहा ठीक, अपने खबर भेज दी, अब पहुंचेंगे 1:30 बजे सामायिक करके चले। तो 1:30 बजे पहुंच गए, आचार्य महाराज को नमोस्तु किया। उन्होंने कहा अच्छा आ गए, थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हमने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम लोग तो रेस्ट करके आए। बोले नहीं, फिर भी 5 मिनट विश्राम कर लो, फिर अभी अपन उठते हैं आहार के लिए। अरे हम तो यही सोच रहे थे कि आचार्य महाराज तो 10:30 बजे पहुंच गए और वो आहार को उठ गए होंगे, और आचार्य जी अभी भी नहीं उठे आहार के लिए। हम कौन होते हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर हैं, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि अभी ये आ जाएंगे, फिर सब एक साथ आहार के लिए। वे चाहते तो उसके पहले भी चर्या कर सकते थे पहली बेला में, लेकिन उन्होंने पहली बेला में चर्या नहीं की। ये उनका जैसे कि माँ अपने बेटे को भोजन करा के ही भोजन करती है, वैसा ही वात्सल हमने उनके अंदर देखा है। उनकी कृपा, हम तो कृपा से ही अभी तक आपके बीच हैं। हमारे जीवन में उनकी कृपा एक क्षण को भी कम होगी तो उस दिन हम आपके बीच शायद नहीं होंगे। हम तो ये मानते हैं कि अगर हमें दीक्षा मिली तो उनकी कृपा से मिली, हमारी कोई योग्यता न हमारी कोई क्षमता थी। उन्होंने चाहा हमसे जो करवाना चाहा वो हम कर पाते हैं, ये तो हम नहीं जानते, पर हम इतना ही जानते हैं कि वे जो हमसे करवाएंगे हमें वो करना है। उनकी कृपा का तो हमने कदम कदम पे अनुभव किया है। ऐसे ही समय जैसे कि आज अपन बैठे हैं, इन दिनों में जैसे कल ही बारिश आई है, वो भी एक समय था। गोटे गांव से हम छपारा की तरफ बिहार कर रहे थे, हमें आदेश नहीं प्राप्त हुआ था। हम 6 लोग थे उस समय, समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और 2 एलक छुल्लक जी और थे, 6 लोग थे। और लखना दौन तक चले गए, कोई हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा आदेश। आचार्य महाराज मुक्तागिरी में है, तो सोचा कि इसलिए नहीं दे रहे होंगे कि अब आने दो, इसी तरफ तो आ रहे हैं, यहीं कहीं दे देंगे। और उतने में जब हम 100 किलोमीटर लगभग लखना दौन तक पहुंचे, वहां से ब्रह्मचारी जी आए कि अरे इस तरफ क्यों आ रहे हो, आपको तो कटनी और सतना दोनों में से कहीं चतुर्मास करना है। अब आदेश तो आचार्य श्री का आदेश है। इतनी धूप में 6-6 किलोमीटर सुबह शाम बामुश्किल चलते थे, समता सागर जी को बुखार आ रहा था, 3-3 किलोमीटर हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि चलो जैसे तैसे, और 100 किलोमीटर बामुश्किल पहुंचे थे, और अब आदेश आ गया है तो यहां से 100 अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर तो जबलपुर, वहां से 100 कटनी और वहां से 100 सतना, 300 और जाना है, और भीषण गर्मी है, पानी तो बरस ही नहीं रहा है। लेकिन आदेश तो आदेश है, गुरु के वचन अनुलंघनीय है, धवला जी में लिखा हुआ है। और यही विचार करके आचार्य महाराज को परोक्ष में प्रणाम करके, और हम बड़े आप आश्चर्य करेंगे गुरु की कृपा जहां छाया बनकर के आती है वो देखते ही बनता है। रोज 2 बजे, और अभी तो 3-3 किलोमीटर चल पाते थे क्योंकि तब तक कोई आज्ञा नहीं मिली थी। आज्ञा मिलने के बाद जो चले हैं तो 2 किलोमीटर से ऐसे बादल हो जाते थे कि 20-20 किलोमीटर 2 बजे से चलकर जहां पहुंचते थे उसके पिछले गांव में खबर मिलती थी कि भीषण वर्षा हुई। और फिर हम लोगों के साथ ये लेबल लग गया था कि भैया महाराज यहां से निकल गए और जैसे ही वे विहार करेंगे इस गांव में पानी बरस जाए। हम लोग हक्के वक्के रह जाते थे कि हम तो सोचते नहीं थे कि कैसे 300 किलोमीटर पार होंगे, और पार होते चले गए और हम लोग कटनी पहुंचे। कटनी में जाके ये दीक्षा दिवस आचार्य महाराज का मनाने का मन था, 3 दिन रुकने का मन था वहीं पर। और हम लोग जिस दिन कटनी पहुंचे तो वहां तो पानी गिरा ही नहीं। वहां के पहले अब कटनी वाले कहने लगे, हमने तो अनाउंस कर दिया है सब दूर कि आज अभी तक पानी नहीं बरसा है, 1 जुलाई आ गई है, अब महाराज आएंगे और पानी गिरेगा। महाराज अब हम नहीं जानते, आप जानो। अब कितनी मुश्किल, हमने तो कोई बरसाया नहीं था कि कोई हम बरसाते हों या हम रोकते हों, ये तो प्रकृति के जो नियम है उनके हिसाब से होगा, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है, यहां कोई चमत्कार तो चलता नहीं है, ना उसमें हमारा कोई विश्वास है। हमारा तो विश्वास भावनाओं की निर्मलता में अवश्य है। भावनाओं की निर्मलता से अगर पर्वत भी राई के समान हो जाए तो हो जाए, समुद्र भी चुल्लू भर में समा जाए तो समा जाए, भावनाओं का चमत्कार हो सकता है। बाकी और किसी चमत्कार की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये तो चेतना की अनंत शक्ति है। और हम लोग सामायिक में बैठे और मन ही मन आचार्य महाराज को स्मरण किया कि महाराज ये क्या हमारे साथ कृपा तो करी आपने कि पानी गिराते जा रहे, सो ये तो हम पे कृपा हो गई, लेकिन ये नया उपद्रव खड़ा हो गया, अब कुछ और कृपा करो आप। और कृपा तो होना ही थी, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं थी। और पानी 2 बजे से गिरना शुरू हुआ और 5 बजे तक गिरता रहा। बात महत्वपूर्ण ये नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि शाम तक एक ब्रह्मचारी जी ने आके कहा कि जब से आचार्य महाराज ने आप लोगों को सतना कटनी तरफ जाने का आशीर्वाद दिया है, शाम को भक्ति के बाद धीरे से कहते हैं कि हमने आदेश तो दे दिया पर इतनी धूप में कैसे जाएंगे। बस वो जो बात है कि इतनी धूप में कैसे जाएंगे, वो जो रोज शाम को उनके मुंह से निकलती है वही आपके रास्ते में छाया करती है, वही आपके रास्ते में पानी। भैया मैं अपने शेष जीवन भर अगर उनके गुणगान करूं तो मुझे कई जीवन लेना पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ ये भर कहता हूं कि उनके चरणों में बैठकर अपने जीवन को निर्मल बना सको तो इससे बड़ी अपने जीवन की कोई उपलब्धि नहीं होगी। बहुत इस पंचम काल में अपन को अगर कोई सुअवसर मिला है तो उन्होंने जो दीक्षा ली है वो दीक्षा उनके लिए तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहयोगी है ही, उनकी दीक्षा लेना हम सबके जीवन के कल्याण में भी सहयोगी है, वशर्ते कि हम अपना कल्याण उनके चरणों में चाहें करना तो हम अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि उनके चरणों का सानिध्य हमें हमेशा बना रहे और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बोले आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि।
गुरुवर शाश्वत सुख